आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
A world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online, और radio पर।
नमस्कार दोस्तों, आज है सोमवार 12 मई और मैं इति दीवान आपका स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी कार्यक्रम में। शाम की चाय हो और कुछ दिलचस्प बातें हो तो बस दिन भर की थकान निकल जाती है। कुछ खबरें, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और बढ़िया से गानों की महफिल के साथ अगला एक घंटा आपका होगा मेरे साथ। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजरी और वोईवुरुंग लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी बुजुर्गों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। जानना चाहेंगे क्या क्या लेकर आएंगे आपके लिए आज इस शो में। सबसे पहले होंगी खबरें ऑस्ट्रेलिया से, फिर होगी एक रिपोर्ट राजनीति से जुड़ी जहां बात करेंगे लेबर पार्टी की जीत के बाद कैबिनेट रीशफल में दो सांसदों की विदाई की। फिर बात करेंगे भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम की, दोनों देशों की पुरानी प्रतिक्रियाएं और आज की रक्षा बैठक से क्या उम्मीद की जाए, बता रहे हैं डॉक्टर दलबीर अलावत। इसके बाद हमारी साथी लेकर आएंगे एक खास अंश इंटरनेशनल नर्स डे पर जो कि है आज 12 मई को। आखिर में मुलाकात भारत के मशहूर शेफ संजीव कपूर से जो पहुंचे मेलबर्न के SBS स्टूडियो में। तो ये सब होगा आज के शो में और अब समय है आज के सवाल का। चलिए सोमवार को बनाते हैं रोमांचक और देते हैं एक बॉलीवुड ट्विस्ट। आज पूछ रहे हैं आपकी फिल्मी कहानी, आपके फिल्मी सपनों के बारे में। तो अगर आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा और उसमें हीरो हीरोइन कौन होंगे? मुझे तो पता है कि क्या होगा मेरी फिल्म का टाइटल, पर ये मैं बताती हूँ कुछ ही देर में। तब तक आप बताइए क्या होगी आपकी फिल्म और उनके हीरो और हीरोइन। नंबर है 04397997667। चलिए सुनते हैं सबसे पहले न्यूज फ्लैश।
प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी जल्द ही अपने नए कैबिनेट की घोषणा करेंगे जिसमें कुछ नए चेहरे अनुभवी राजनेताओं के साथ शामिल हो सकते हैं। लेबर नेता पहले ही इनोवेशन मिनिस्टर एड ह्यूसिक को उनके पद से हटाने के कारण आलोचना का सामना कर चुके हैं। एड ह्यूसिक पहले मुस्लिम राजनेता थे जिन्होंने सरकार में मंत्रालय संभाला था। उनका कहना है कि गाजा संघर्ष पर अपनी राय रखने के बाद उन्हें नकार दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल्स पार्टी कुछ ही घंटों में अपने नेता का चुनाव करने वाली है जहां क्वींसलैंड के सेनेटर मैट कैनवन मौजूदा नेता डेविड लिटिल प्राउड को चुनौती देने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम यानी सीज फायर लागू किया गया है लेकिन दोनों देशों के बीच चेतावनियों का आदान प्रदान जारी है। कश्मीर के निवासी धीरे धीरे अपने व्यवसायों और घरों की ओर लौट रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं जिसके लगने के बाद कश्मीर में गोलाबारी देखी गई थी। अमेरिका ने इस शांति वार्ता की पहल की थी लेकिन भारत का कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ सीधे समाधान की उम्मीद रखते हैं और किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं चाहते हैं। पिछले साल हुई बोंडाई जंक्शन में चाकू हमले की जांच अब तीसरे सप्ताह में पहुंच चुकी है और आज एक मनोचिकित्सक अपनी गवाही देंगे। ये मनोचिकित्सक उस जांच में शामिल होंगे जिसमें पिछले साल इस हमले में 6 लोगों की हत्या हो गई और अन्य 10 लोग घायल हो गए। इस हमले के आरोपी जोएल काउची की मानसिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि घटना के समय जोल मानसिक रूप से अस्थिर थे। चाइना और अमेरिका एक संयुक्त बयान तैयार कर रहे हैं क्योंकि दोनों देशों ने पुष्टि की है कि एक नया बायलैटरल व्यापार समझौता हो गया है। आज लाखों फिलिपिनी नागरिक मध्यावधि यानी कि मिड टर्म चुनावों में मतदान कर रहे हैं, जो इम्पीच्ड उपराष्ट्रपति सारा ड्यूतर्ते के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। ड्यूतर्ते पर राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस पर हत्या की साजिश का आरोप है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के चलते सुपरमार्केट चेन्स कोल्स और वूलवर्थ्स मूल्य निर्धारण या प्राइस गाउजिंग की जांच के घेरे में आ रही है। इसके चलते वूलवर्थ्स ने 400 उत्पादों पर छूट की घोषणा की है। बुधवार 14 मई से वूलवर्थ्स ब्रांडेड व्हाइट ब्रेड, माइक्रोवेव राइस, चिकन स्निट्ज़ल और ग्रीक योगर्ट सहित कई उत्पादों की कीमतों में औसतन 10% की कमी होगी। बड़ी पैकिंग में मिलने वाले नैपीज और कोका कोला पर भी छूट लागू होगी। वूलवर्थ्स के सीईओ का कहना है कि जो परिवार प्रति सप्ताह लगभग $150 खर्च करते हैं, वो इस प्राइस रिडक्शन से हर सप्ताह लगभग $15 की बचत कर सकते हैं। तो ये थी खबरें इति दीवान के साथ। तो ये आपने सुना न्यूज फ्लैश। ऑस्ट्रेलिया के चुनावों में लेबर पार्टी की जीत के बाद अब विपक्ष के नए नेता की तलाश जारी है और दो उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी की पुष्टि की है। वहीं लेबर की भारी जीत के बाद दर्जनों राजनेता कैनबरा में वापस आ गए हैं। तो आइए सुनते हैं राजनीतिक हलचल पर ये अंश।
Okay, for this hugely expanded Labor caucus, let's give it up for Australia's Prime Minister.
भारी समर्थन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और लेबर के नेता एंथनी एल्बनीज़ी के लिए।
We don't seek power for its own sake, not to decide who's in what part of the building. We seek power in order to deliver for the people who need Labor to be in government.
लोअर हाउस की सीटों की मतगणना अंतिम चरण में है और एक बात तो तय है, सांसद में महिलाओं का जोर है। लेबर के लिए सिर्फ क्वींसलैंड में ही 6 और महिलाएं चुनी गई हैं। एंथनी एल्बनीज़ी कहते हैं कि ये एक गर्व की बात है।
I look around this room and I see a representative group, a majority of women, up to, we're still counting, of course, but at least 57% women.
एल्बनीज़ी ने अपने नए मंत्रिमंडल की भी घोषणा की है। अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफिस और साइंस और इंडस्ट्री मिनिस्टर एड ह्यूसिक अब मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। नए सदस्यों में टिम एयर्स और जेश वॉल्स शामिल हैं। ट्रेजरर जिम चामर्स ने कहा है कि उन्हें उन दोनों के लिए सहानुभूति है।
We've got too many good people for the spots that we have. You know, I feel for those two guys. And it's always difficult when you've got as much talent as we have to fit everyone in.
पूर्व लेबर प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग इस फैसले से नाखुश हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि एड ह्यूसिक की मेहनत और समर्पण को नजरअंदाज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फैसला लेबर पार्टी की छवि के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है, जो खुद को समावेशिता और विविधता की पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है। उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स ने एंथनी एल्बनीज़ी के फैसले का बचाव किया।
Only 30 spots are available. Inevitably, there are more people who could serve as really effective ministers than there are spots. And it can be tough, but we need to balance stability with renewal.
इस बीच विपक्ष अपनी हार के बाद पुनः निर्माण की तरफ जुट गया है। विपक्ष के ट्रेजरी अफेयर्स के प्रवक्ता एंगस टेलर और उपनेता सुजन ली ने नेतृत्व के लिए अपनी दावेदारी की पुष्टि की है। उन्होंने अपने अपने तर्क पेश किए। सुजन ली का कहना है,
I am not going to take a backward step. We can be successful. We can win the next election. And this is a moment to look forward.
वही एंगस टेलर कहते हैं,
I've rebuilt businesses. I've fought on the front line of tough debates. I know what it takes to lead, to unify and to deliver.
नेशनल पार्टी की जेसिंटा नैम्पी जिन्पा प्राइस ने दल बदलकर लिबरल पार्टी को स्वीकार किया और इस झटके से नेशनल पार्टी अभी बाहर नहीं आ पाई है। वहीं डेविड लिटिल प्राउड को अब अपने नेतृत्व की कुर्सी बचाने के लिए मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। कंट्री लिबरल पार्टी की सदस्य होने के नाते जेसिंटा प्राइस लिबरल्स या नेशनल्स दोनों में से किसी के साथ भी होने का निर्णय ले सकती हैं। उनका कहना है कि लिबरल्स के साथ जुड़कर वो ज्यादा प्रभाव डाल सकती हैं। नेशनल्स की सेनेट नेता ब्रिजिट मैकेंसी ने स्काई न्यूज से कहा कि वो निराश हैं।
Yeah, absolutely. I think it's a devastating loss to our party room, particularly our Senate party room. We're a tight team, we're a close-knit team. We've fought many battles together. And whilst we're strong coalitionists, we are very, very separate parties. And so it's very disappointing news that Jacinta has decided to head over to the Liberals.
ग्रीन्स ने अभी तक नया नेता नहीं चुना है, लेकिन एक्टिंग लीडर निक मैकिम ने कहा है कि वे सेनेट के लिए तैयार हैं।
The Prime Minister's comments have more than a whiff of arrogance and hubris about them, and we have no intention of taking our riding instructions from an arrogant Prime Minister.
SBS न्यूज की एना हैंडरसन की इस रिपोर्ट को आपके लिए प्रस्तुत किया SBS हिंदी से इति दीवान ने। तो ये था ऑस्ट्रेलिया के नए राजनीतिक रूप पर एक अंश। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध विराम पर। ब्रेक के बाद SBS हिंदी पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं इति दीवान को। भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से एक युद्ध विराम घोषित हो गया है, लेकिन कितना स्थिर है ये युद्ध विराम? क्या रही है भारत और पाकिस्तान की युद्ध विराम के मामले में अतीत में प्रतिक्रिया? विश्लेषण कर रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर दलबीत अलावत वृषाली जैन के साथ। तो आइए सुनते हैं ये अंश। SBS हिंदी पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दलबीर अहलावत। डॉक्टर अहलावत ने सरकारों, यूनिवर्सिटियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करते हुए दुनिया के कई हिस्से जैसे अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में रणनीतिक और सुरक्षा मामलों पर शोध किया है, लेकिन भारत की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा चुनौतियां उनका शोध क्षेत्र रहा है। हाल ही में जिस तरह की पाकिस्तान और भारत की तनाव की स्थिति रही है और फिर हमने चर्चाएं सुनी है कि किस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, तो इस पर आज विस्तृत चर्चा के लिए हम डॉक्टर अहलावत से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अहलावत, आपका SBS हिंदी में स्वागत है।
धन्यवाद वैशाली।
तो डॉक्टर रावत, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता से किस तरह से ये युद्ध विराम अचानक से पा लिया गया है, और क्या युद्ध विराम के जो इस उल्लंघन की बातें सामने आ रही हैं, क्या ये अपने आप में एक बड़ा खतरा है?
देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट JD विंस ने बोला था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी चल रहा है None of our business. इसमें हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, हमारी स्टेक्स नहीं है। एक दिन बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या है कि पोटेंशियल ऑफ रैंप, कि पाकिस्तान की एक आउट ऑफ वे जाके कुछ करना चाहता है। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन पे है कि इसका मतलब क्या है। हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, शायद वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकता है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। लेकिन इससे थोड़ा सा और हमारे को क्लैरिटी मिलती है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका में मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि हमने पूरी रात बहुत मेहनत करके ये सीज फायर का जो हमने बैकग्राउंड तैयार की है, और इसके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान सहमत हो गए हैं पूरी और एकदम से अभी सीज फायर के लिए, और अमेरिका ने मेडिएशन किया है इन बातों में, अमेरिका की ने मध्यस्थता की है। पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे, उन्होंने भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को फोन किया 3:30 बजे और बोला कि पाकिस्तान सीज फायर चाहता है। उसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका का ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, लेकिन भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने कहा कि सीज फायर है ये दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डील होगी। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि जैसे ही ये अनाउंस हुआ उसके बाद में सीज फायर का वायलेशन हुआ, और इसमें दोनों देश एक दूसरे को ठहराते हैं कि दूसरे ने शुरू किया, लेकिन इसमें अभी तक जो एविडेंस दिखाई देता है, बीबीसी का भी आप देखेंगे या वहां के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखेंगे या और एविडेंस देखेंगे ऑडियो विजुअल, उसमें लगता है कि पाकिस्तान ने इसका सीज फायर का उल्लंघन किया है। अभी जो बेसिक जो अभी जो डाटा है उसके बेसिस पे ऐसा लगता है, लेकिन सवाल अहम ये उठता है कि ये सीज फायर एग्रीमेंट है क्या, क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए अभी तक इस एग्रीमेंट में मैंने जो अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, इसमें सिर्फ दो ही बातें हैं। एक है इमीडिएट सीज फायर, तुरंत ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, और दूसरा है जो आगे जो स्पाइरल है, जो लड़ाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए, मिलिट्री ऑपरेशंस बंद होने चाहिए। इसके लिए आज 12 मई को भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में बात होगी, उसके बाद वो उसके ऊपर सहमत होंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो बैठेंगे और एक डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करेंगे। उस डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरह की दोनों देशों देश अपनी कंडीशंस लगाएंगे। भारत की एक कंडीशन ये होगी कि जो यदि भारत में कोई भी उग्रवाद की कोई घटना हुई तो भारत उसको एन एक्ट ऑफ वॉर करेगा और उसके अगेंस्ट काइनेटिक एक्शन लेगा। सो इस तरह से सीज फायर तो भी हुआ है, उसका उल्लंघन भी हुआ है, लेकिन अभी तक सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो नहीं आई है, इसलिए स्थिति बड़ी ही अभी साफ नहीं है, क्लियर नहीं है।
तो डॉक्टर अहलावत, सबसे पहले तो बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, कि किस तरह से भारत ने जो मिसाइलें पाकिस्तान के, उनकी भाषा में कहा जाए तो आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से अटैक किया, कहाँ तक वो जायज है और कितना उसको समझा जा सकता है सुरक्षा के नजरिए से।
भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लंबी कहानी है जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का के बारे में बोला जाता है, और इंडिया में अभी आप देखिए 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, 2008 में मुंबई में हुआ, 2016 में उरी और पठानकोट में हुआ, 2019 में पुलवामा में हुआ, अभी 2025 में पहलगाम में हुआ है। और ये पहलगाम का ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट थे उनको धर्म के बेसिस पे अलग किया, जो उसमें मेल थे, जो आदमी थे, उनको टारगेट किया गया। तो इससे ये बनता है कि पार्टिकुलर किसी उनका ऑब्जेक्टिव था कि किसको टारगेट करना है। तो इसके लिए दी रेजिस्टेंस फोर्स ने इमीडिएटली रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमारा काम है, हालांकि उन्होंने बाद में इसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन जो दी रेजिस्टेंस फोर्स है इसका एफिलिएशन लश्करी तैयबा से है। लश्करी तैयबा का ऑपरेशंस पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान की सॉइल से ऑपरेट करती है, और इसके जो हेड है वो हाफिज मोहम्मद सईद हैं। इनका 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उनमें भी इनका हाथ बताया जा। देश में बहुत ही एंगर था इंडिया में और गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर था, इसलिए सरकार ने टेररिज्म को एज एन एक्ट ऑफ वॉर लेते हुए ये स्ट्राइक्स की अक्रॉस द बॉर्डर। लेकिन इसमें भारत सरकार का क्लियर ये था कि जो टारगेट्स हैं, जो नौ जगह पे जहां टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वहां पे ही टारगेट होगा, प्रिसाइज होगा, इसके बाद स्पाइरल इसका एक्सपेंशन नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान ना तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट कर रहे हैं, ना पाकिस्तान की जनता के अगेंस्ट कर रहे हैं, जो उग्रवादी हैं उनके अगेंस्ट वो काम करेंगे, और इसलिए उन्होंने ये प्रिसाइज मिसाइल से अटैक किया है वो किया है। तो भारत का कहना है कि उनकी लड़ाई टेररिज्म से है, ना पाकिस्तान से है, ना पाकिस्तान की मिलिट्री से है, ना पाकिस्तान की जनता से।
इस समय भी जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उस पर हालात तनावपूर्ण ही है क्योंकि दोनों ही ओर से उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कितना स्थिर है ये युद्ध विराम और आगे भविष्य की किस तरह से आपको चाल दिख रही है आज के हालात के अनुसार?
देखिए इसमें क्या है कि जो भारत और पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, इसमें से ज्यादातर बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वहां पे ज्यादा नहीं है। जो मेन फोकस है वो 750 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है, मेनली ये कश्मीर में है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्या था कि 1971 में जो वार हुआ था उसके बाद सिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था 1972 में, और उसके बाद ये जो सीज फायर लाइन को ये लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया था। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ज्यादातर अभी शांति है। 2021 में दोनों देशों ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था और 2021 से अभी 2025 तक दोनों देशों ने उसको मान्यता दी है, लेकिन जैसे ही अभी अटैक हुआ तो उसके बाद जो LOC है वो वोलेटाइल होगी। तो कुल मिला के इसमें कहने का ये है कि जो LOC के ऊपर दोनों देश अपना हक मानते कि हमें उस साइड में जा सकते हैं, जैसे कि अभी पाकिस्तान के जो COS हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर जी, उन्होंने कहा अभी एक लेक्चर दिया था, और जो कि विदेशी पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस लेक्चर में उन्होंने कहा एक टू नेशन थ्योरी के ऊपर फोकस किया था कि इस्लाम और हिंदुइज्म अलग अलग हैं, दे कभी भी इकट्ठे नहीं थे ना रह सकते। दूसरा उन्होंने एक और पॉइंट जो रेज किया था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जुगलर वेन है। तो ऐसी स्टेटमेंट से क्या हुआ कि एक इन्फ्लेशन हुआ कि LOC का तो ये रेस्पेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हिंदू मुस्लिम का इश्यू ला दिया और कश्मीर को पूरा को अपना हिस्सा मानते हैं, तो इसलिए जो LOC का है उन्होंने एक क्रेडिबिलिटी को ऊपर एक सवाल चिन्ह लगा दी। तो एक ये वोलेटाइल सिचुएशन है।
तो आने वाला समय और आखिरी यही मेरा आखिरी सवाल भी होगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है जो अमेरिका ने मध्यस्थता की है, तो क्या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आपको लगता है भारत पाकिस्तान के रिश्तों में स्टेबिलिटी ला सकता है, स्थायित्व ला सकता है? क्योंकि पूर्व में या कहें कि इतिहास में ऐसी कोई भी इंटरवेंशन पहले सफल नहीं रही है।
इसमें एक बैकग्राउंड है जो भारत और पाकिस्तान के संबंध है कि इन्होंने 1972 में एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको कहते हैं सिमला एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट में स्पेसिफिक क्लॉजेस हैं जैसे कि दोनों देश पीसफुल एंड हार्मोनियस रिलेशंस रखेंगे, संबंध शांतिपूर्वक संबंध रखेंगे, एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसका रेस्पेक्ट करेंगे, इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेंशन नहीं करेंगे, और जो सबसे अहम क्लॉज है उसमें का है जो डिस्प्यूट्स हैं वो बायलेटरल लेवल पे करेंगे, दोनों द्विपक्षीय समझौता होगा, वो तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अभी जैसे कि अमेरिका ने मध्यस्थता की है, मध्यस्थता में क्या होता है टेक्निकली कि दोनों पार्टी एक थर्ड पार्टी के पास जाएं और बोले कि आप हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, तो उस हिसाब से यदि भारत ने लगता है भारत से डिस्कशन जरूर हुआ है लेकिन भारत ने लगता है कि इनवाइट नहीं किया अमेरिका को कि इसमें मध्यस्थता कीजिए, तो इसीलिए क्या है कि अभी दोनों कंट्री के बीच में ही आज 12 मई को एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे सीज फायर के लिए। एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स होंगी और वो टर्म्स को रेस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो दोनों के ऊपर लगता है। और भारत के लिए अच्छी बात क्या है कि भारत ने ये एक्शन लेने से पहले सब देशों से बातचीत की, तो उसमें भारत को बहुत ही एक ज्यादा सपोर्ट मिली कि हर देश ने कहा कि हम उग्रवाद के विरुद्ध हैं, और पाकिस्तान को उस हिसाब से थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास जो सपोर्ट आई वो टर्की, अजरबैजान और चाइना से ही आई है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है क्योंकि पाकिस्तान में भी टेररिज्म है और ये इसे फाइट कर रहा है, पाकिस्तान की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें एक समाधान जो हो सकता है कि दोनों देश बैठ के ऐसा एग्रीमेंट साइन करें जो उग्रवाद है साउथ एशिया में या भारत पाकिस्तान में उसको वो मिलके फाइट कर, क्योंकि दोनों देशों के लोग शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, वो आपस में काफी चीजें, कल्चर है, हिस्ट्री है, शेयर करते हैं। तो इसलिए यदि इस रीजन को पीसफुल और डेवलपमेंट देखनी है तो दोनों देशों को उग्रवाद के विरुद्ध मिलके लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
डॉक्टर अहलावत, आपने इतना समय निकाला आज हमसे बात करने के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया।
नहीं नहीं आपको थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी और ये अच्छा लगा आपसे बात करके।
इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है, SBS ना ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत।
तो ये आपने सुना एक अंश भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम पर वृषाली जैन के साथ। समय है एक ब्रेक का, जब तक मैं जाती हूँ ब्रेक पर आप कीजिए हमें मैसेजेस। आज पूछ रहे हैं आपसे, अगर आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा और उसमें हीरो या हीरोइन कौन होंगे। तो मैंने तो टाइटल सोच लिया है, सिलसिला, क्योंकि चाहत का, सुकून का, मस्ती का और हसल का सिलसिला मेरी जिंदगी में तो हमेशा जारी रहता है। और इसके हीरो हीरोइन होंगे दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। आप भी बताइए क्या नाम देंगे अपनी जिंदगी की फिल्म को। नंबर है 04397997667। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं इति दीवान को SBS हिंदी पर। दोस्तों, आज जो भी अंश आप इस शो में सुनेंगे वो सब हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर पॉडकास्ट कलेक्शन पर भी उपलब्ध है। हमसे जुड़िए जब आप चाहें, SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। तो आज यानी कि 12 मई को होता है इंटरनेशनल नर्स डे। हमारी सहयोगी स्वाति शर्मा लाई है एक खास अंश उन नायिकाओं और नायकों पर जो हर दिन किसी शोर बिना संवारते हैं दूसरों की जिंदगी।
हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को चिन्हित करता है जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग की स्थापना की। साथ ही उन्हें क्रीमियन युद्ध के दौरान घायल सैनिकों का इलाज करने में दिखाई बहादुरी के लिए भी याद किया जाता है। इस खास मौके पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे नर्सों से जिन्होंने किसी अन्य देश से ऑस्ट्रेलिया आकर इस पेशे को चुना, चुनौतियों का सामना किया और आज हेल्थ केयर सेक्टर में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन नर्सों की कहानियों में मेहनत, समर्पण और एक बेहतर भविष्य की तलाश है। आइए जानते हैं इनकी जुबानी।
मेरा नाम हरविंदर भगत है। मैं साउथ ईस्टर्न प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग की जॉब करती हूँ।
मेरा नाम है गौरव शर्मा। मैं हेड टीचर इन हेल्थ एंड नर्सिंग में हूँ, सेफ न्यू साउथ वेल्स में।
30 साल से नर्सिंग के पेशे में कार्यरत मेलबर्न की हरविंदर कौर बताती हैं कि कैसा रहा उनका सफर और क्या है वह चीज जो आज भी उन्हें इस क्षेत्र में काम करते रहने की प्रेरणा देती है।
नर्सिंग में बहुत इंटरेस्ट था बिकॉज मेरे को था कि मेरा नेचर है वेरी केयरिंग है। उसमें लगा कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं अपनी स्किल्स यूज कर सकती हूँ। इस प्रोफेशन में हमारी डिमांड एक तो बहुत है और हम शिफ्ट वर्क कर सकते हैं, लाइक स्पेशली जब बच्चे होते हैं तो हम लोग शाम की जॉब भी कर सकते हैं जब हस्बैंड घर पे आ जाते हैं। तो उसमें यह कि एक टाइप का हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें मेडिकल नॉलेज आपकी बढ़ती है और वो आप किसी के काम आ सकते हो। और मेरे को ये लगा कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को और अपने आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं उनको गाइड कर सकती थी उस टाइम, तो ये सोच में था। इट्स बीन रियली रियली गुड दैट मैंने ये चूज किया प्रोफेशन।
वहीं न्यू साउथ वेल्स के ऑरेंज में रहने वाले गौरव शर्मा 2015 में भारत से ऑस्ट्रेलिया आने के बाद से ही इस पेशे के साथ जुड़े हुए हैं, पहले बतौर नर्स और अब हेल्थ एंड नर्सिंग के मुख्य शिक्षक के ओहदे से। गौरव नर्सिंग को अपनी आजीविका बनाने का कारण बताते हुए कहते हैं,
मैं हमेशा से कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड काम करना चाहता था जो साइंटिफिक भी था, और ऑस्ट्रेलिया में मेरे को ये ऑप्शन मिली ताकि मैं सेवा कर सकूं पेशेंट्स का जब वो मुश्किल में आते हैं तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा, उससे मुझे एक ऑप्शन मिलती थी कि मैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम के बारे और एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ह्यूमन बॉडी के बारे और एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मैंने शुरुआत की जब नर्सिंग में, तो मैंने सबसे पहले साइकेट्री में काम किया, उसके बाद मैंने एज केयर में काम किया और फिर इमरजेंसी सेक्टर में काम किया। उस सब एक्सपीरियंस को मैं अब टीचिंग में अप्लाई करता हूँ ताकि आने वाले पीढ़ी है उसको मैं नर्सिंग के कई तरह के एक्सपोजर के बारे एक्सप्लेन कर सकूं।
इस सफर के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताती हुई हरविंदर कहती हैं,
शिफ्ट बड़ी लॉन्ग होने लग गई थी और वर्कलोड बढ़ने लग गया था क्योंकि आफ्टर ऑल नर्सेज भी ह्यूमन है तो वो भी सिक हो जाते हैं, तो फिर स्टाफ की शॉर्टेज हो जाती है, उसके कारण एक्सपोजर टू इन्फेक्शन भी होने लग जाते हैं बिकॉज अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो वहां से आप कैच कर सकते हो। कई बार इतना काम हो जाता है कि ब्रेक्स नहीं मिलती थी, रेस्ट है वो नहीं मिल पाता, प्रॉपरली खाना नहीं कई बार खा होता बिकॉज आप कितना दौड़ रहे हो, काम कर रहे हो और डिहाइड्रेशन।
अब बात करते हैं कि वे नर्सिंग इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या हैं उनकी उम्मीदें और सिस्टम को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है।
जब मैंने शुरू किया था मे बी आई वॉज वेरी यंग, तब हो जाता था कि पेशेंट्स जितने भी हो हम हैंडल कर लेते थे, बट एज यू एज नर्सेज भी तो ह्यूमन है ना, दे स्लो डाउन एज वेल। उसमें ये है कि एज एक्सपीरियंस चीजें आसान तो हो जाती हैं बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे अब इजी हो गया हैंडल करना पेशेंट। शुरू में ये चीज हार्ड लगती थी कि पेशेंट्स को क्या बताएं, ये सही है क्या गलत है, पूछ के बताना पड़ता था। अब ये है कि इतनी नॉलेज आ गई है कि हम स्ट्रेट अवे उसको हैंडल कर सकते हैं।
हेल्थ केयर सिस्टम में जो हम पेशेंट्स का डाटा मैनेजमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम किस तरह से पेशेंट को मेडिसिन देनी है, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, पहले काफी हद तक पेपर बेस्ड होता था, अब काफी कुछ इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली हो गया है। उससे काफी फायदा हुआ है, समय बचता है और आपके पास इंफॉर्मेशन क्विकली आती है, उससे नर्सेज को काफी सपोर्ट हुई है अपने टाइम को बैलेंस करने के लिए। अब रिसेंटली AI भी आ रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वो अभी क्वाइट अर्ली स्टेज पे है पर उससे भी आने वाले टाइम पे काफी बेनिफिट होने वाला है क्योंकि काफी डाटा हमारे पास आ चुका है और जिसको हम AI की सपोर्ट से यूज करके मोर एक्यूरेसी में आ सकते हैं फॉर पेशेंट केयर।
हरविंदर और गौरव दोनों का ही कहना है कि नर्सों को अधिक सहयोग मुहैया करवाकर उनके संघर्ष को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
आई थिंक काफी हद तक ये हो भी रहा है बट इट टेक्स टाइम कि पेशेंट और नर्सिस की रेशो, कि एक नर्स को कितने पेशेंट्स का केयर करना है तो वो एक मेंटेन करके रखना चाहिए जो रिक्वायर्ड रेशो है। वो नर्सिंग की शॉर्टेज से वो कभी कभी डिफिकल्टी होती है बट इट इज स्टिल पॉसिबल अगर गवर्नमेंट्स हमारा साथ दें, रिक्रूटमेंट्स होती रहें और दे आर ऑलवेज नर्सेज ऑन अ कैजुअल स्टैंडबाय।
तो ये थी कुछ चुनिंदा आवाजें जिन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि देखभाल केवल एक काम नहीं बल्कि एक मिशन है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर हम हर उस नर्स को सलाम करते हैं जो दिन रात बिना रुके अपने पेशे को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं।
तो ये आपने सुना एक खास अंश स्वाति शर्मा के साथ जिन्होंने बात करी इंटरनेशनल नर्स डे के, जो है आज 12 मई को। अच्छा, आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा और कौन से हीरो हीरोइन को कास्ट करना चाहेंगे। हमें एक मैसेज आ गया है, चलिए पढ़ देते हैं। ग्रेट प्रोग्राम इति जी, मूवी नेम इज जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, हीरो इज फरहान अख्तर एंड हीरोइन इज प्रीति जिंटा। और ये मैसेज भेजा है आलोक ने। तो आलोक जी, क्या आप भी अपनी प्रीति जिंटा के साथ स्पेन जाना चाहते हैं? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हर शाम 5 बजे आने वाले इस कार्यक्रम में, जहां हम आपको सुनाते हैं कुछ खबरें और कुछ गीत, और मैं हूं इति दीवान। अब समय है आपको भारत के मशहूर शेफ संजीव कपूर से मिलाने का, जो आए SBS के मेलबर्न स्टूडियो में और बात करी हमारी सहयोगी नताशा कॉल के साथ। भारत आज अपनी संस्कृति और परंपराओं की वजह से ही नहीं बल्कि अपने खाने खजाने के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लोकप्रियता बढ़ाने वाले को सेलिब्रिटी शेफ कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो आए हैं वो भारत में 19 साल पहले एक बहुत ही पॉपुलर कुकिंग शो लेकर आए थे जिसे आज भी भारत में लोग देखते हैं। अब ये एक लेखक भी हैं और पद्मश्री पुरस्कृत भी हैं। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिग्गज सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर। संजीव जी, आपका SBS स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद नताशा, बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी इतनी शुद्ध हिंदी ऑस्ट्रेलिया में कोई बोल रहा है। अभी तो भारत में भी ऐसी हिंदी सुनने को नहीं मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है जब भी कभी ऐसा होता है। तो मैं क्योंकि हिंदी भाषी प्रांत से मैं बड़ा पला हुआ तो मुझे हिंदी सुनने में बोलने में बहुत अच्छा लगता है।
ये छोटा सा भारत ऑस्ट्रेलिया में भी है।
बहुत 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 अच्छी बात है। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद
जी। संजीव जी, ये आपका पहला ट्रिप नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, इससे पहले भी आप कई बार आए हैं। आप टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, लेकिन इस बार आपका क्या उद्देश्य है, क्या करने आए हैं ऑस्ट्रेलिया?
बिल्कुल, मैं बहुत बार ऑस्ट्रेलिया आया हूँ। मेरी वाइफ की सिस्टर, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है, तो बहाने बहुत होते हैं। लेकिन इस बार जो मेरा कारण जो है वो है कि एक नई रेंज खाने की प्रोडक्ट्स की हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और वो जो पूरी रेंज है वो सब जगह बहुत बड़े स्केल पे उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। कोल सुपरमार्केट में ऑलरेडी आ चुकी हैं। हम लोग यहाँ पर अपने पिकल्स जो हैं वो हैं, मैरिनेड्स हैं, करी पेस हैं, उसके साथ साथ सॉसेज हैं, चिली सॉस है, स्पेशल चिली सॉस है, चटपटी सॉस है, और एक पहली बार एक हाई प्रोटीन खिचड़ी, मसाला खिचड़ी। अच्छा। पालक की खिचड़ी, उसमें अलग अलग ग्रेन्स के साथ खिचड़ी। तो ये पांच चीजों की जो रेंज है ये हम लॉन्च करने के लिए यहाँ पर आए हैं
जी। और आपको बता दूं, जो अभी सरकारी आंकड़े आए हैं उसमें ये पाया गया कि भारतीय समुदाय पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बड़ा है।
बिल्कुल।
ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत से सेलिब्रिटी शेफ हैं, आपको सेलिब्रिटी शेफ कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैट प्रेस्टन है, गैरी है, जॉर्ज कोलंबारिस है, कर्टिस स्टोन है। तो अगर हमें आपको किसी के साथ कंपेयर करना हो, सबसे ज्यादा खुशी आपको किसके साथ तुलना करने में होगी?
नहीं, आई थिंक ये बड़ा तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। आई थिंक सबके अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, और ये मैं सबको जानता हूँ। तो मैं मतलब अभी मैं परसों ही, क्योंकि मैं मेलबर्न आ गया था, तो मैट से मिला, मैट प्रेस्टन से। पिछली बार मैं जॉर्ज और गैरी दोनों से मिला था। तो मेरे लिए तो सब प्रिय हैं। तो मैं कहूँगा कि तुलना अगर करनी है तो आई थिंक गैरी जो हैं उनको भी अलग अलग, बहुत क्यूरियस हैं वो, हर चीज को जानने की पूरी इच्छा, और बहुत मिलनसार हैं। अच्छा। तो आई वुड से कि अगर सबसे ज्यादा आप कंपेयर करने के लिए जबरदस्ती कहेंगे तो मैं गैरी के साथ कहूंगा।
कंपेयर मैं कह रही हूँ किसके साथ सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी।
हाँ, खुशी, देखिए खुशी तो सबके साथ मिलेगी क्योंकि अच्छे लोग हैं, बट तो लेकिन गैरी शायद
ज्यादा क्लोज।
बिल्कुल
जी। अच्छा, खाना बनाने की कौन सी ऐसी आपकी पसंदीदा तरकीब है जिसके बिना आप भारतीय खाना बना ही नहीं सकते?
मेरी मुस्कुराहट।
अरे वाह। और कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर आप भारतीय खाना नहीं बना सकते?
जो फिर से मेरी मुस्कुराहट। नहीं, अब देखिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब लोग रहते हैं तो उनके पास समय भी कम होता है, साधन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है, तो ऐसे में कोई मतलब सहायक मिल जाए तो हम ये जो अपनी रेंज है, अर्थ हमने इसको नाम दिया है
जी,
तो उसका मीनिंग ही यही है कि जिंदगी में आपकी जो उसका मीनिंग है बदले, उसमें एक आपका सहायक बन जाए। तो आई वुड से कि जो अर्थ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमने इसीलिए बनाए हैं सो दैट इट मेक्स योर फूड, आपको अच्छा ऑथेंटिक इंडियन खाना मिले, और आप बड़ी आसानी से बना सके। और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिशनल चीज़ें बनाएं। अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोड्यूस मिलती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो तंदूरी पेस्ट है वो तंदूरी चिकन बनाने में लगाएं। यहाँ पे बारामंडी फिश इतनी अच्छी मिलती है तो आप उस पर लगा के खाइए, उसको लगा के अवन में आप बेक कीजिए। आप हमारे पिकल्स हैं, स्वीट लाइम पिकल है हमारा, उसको सैलड ड्रेसिंग के अंदर, किनवा और चिकपीज का सैलड आप बनाइए, उसके अंदर स्वीट लाइम पिकल को डाल के एज ए ड्रेसिंग आप बनाएंगे, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप बना सकते हैं। तो मेरे लिए अगर इंग्रेडिएंट मैं कहूँगा तो आज और कुछ आने वाले समय के लिए तो अर्थ रेंज ही रहेगी।
जी, ऑस्ट्रेलिया में आपका सबसे फेवरेट ईटरी कौन सी है?
ऑस्ट्रेलिया में मेरी फेवरेट ईटरी कौन सी है? सी, बहुत समय तक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में, अभी हाल में नहीं कहूँगा, वो होगा तेत्सुया करके सिडनी में रेस्टोरेंट।
अच्छा।
हाँ, वो होगा। उसके बाद मेलबर्न में अगर मैं कहूँगा तो एटिका बहुत अच्छा रेस्टोरेंट कहूँगा, क्योंकि जो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ का आप खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आके कहूँ कि ये वाला सबसे बढ़िया इंडियन खाना यहाँ मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का खाना यहाँ पे कहाँ मिलता है, तो मैं वो चखता हूँ। मेलबर्न में कॉफ़ी कल्चर बहुत बढ़ गया है, छोटी छोटी जगहों पे इतनी बढ़िया कॉफ़ी मिलती है, तो आजकल मेरा फेवरेट वो है।
अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आप हर एस्पेक्ट को उसने हमें घेरा हुआ है, तो प्रोफेशनल किचन और जो कुकिंग इंडस्ट्री है उसमें कहाँ तक इसका प्रभाव पड़ा है?
बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं, मैंने करीब 8 साल पहले एक कंपनी इसकी शुरू की थी। उस समय हम उसको ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोलते थे हम लोग, मतलब पूरा जितनी मशीन लर्निंग के हिसाब से हमने जो स्मार्ट स्पीकर्स हैं जितने भी होते हैं उसके लिए कंटेंट, उसके लिए रेसिपीज कुक अलोंग हमने शुरू की, पर यूजिंग जितनी उसकी प्रोग्रामिंग है जो NLP जैसे कहते हैं, जो मशीन लर्निंग है, जो अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहते हैं, तो वो हमने करीब 8-9 साल पहले शुरू किया था और काफ़ी अच्छा उसमें हम अभी भी हमारी रेसिपीज पूरी दुनिया में जो जितने भी स्मार्ट स्पीकर्स आप पूछते हैं कि एलेक्सा ये बताइए कैसे है, तो ज़्यादातर रेसिपीज हमारी पावर्ड हैं उसमें। तो ये तो अभी शुरुआत हुई है मैं कहूँगा, और चाहे वो घर की किचन हो या प्रोफेशनल किचन हो, इसमें सुविधाएं लोगों के लिए बढ़ने वाली हैं, बढ़ रही हैं, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, सारी चीज़ों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आपके पास में। मतलब मुझे याद है आज से करीब ऑलमोस्ट 30 साल पहले जब मैंने वेबसाइट sanjeevkapoor.com शुरू की थी, तो उस समय व्हाट इज़ इन योर फ्रिज हम करते थे, एक आप इंग्रेडिएंट्स डालिए, एक हमने छोटा सा प्रोग्राम उसमें वेबसाइट में डाला था कि आप अपने इंग्रेडिएंट्स उसमें डालिए, आपके फ्रिज में क्या है, और हमारी वेबसाइट बताती थी कि आप क्या कौन सी रेसिपी बना सकते हैं, और रेसिपी उस वेबसाइट पे थी। फिर उसको हमने ऐप में डाल दिया, फिर नेचुरली शोज के अंदर वैसा हो गया। अब ये आप मिनटों में नहीं, मतलब पलक झपकते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके, अब तो आप स्कैन कर सकते हैं आपके फ्रिज में क्या है, सिर्फ फोन से स्कैन कीजिए और इट विल थ्रो यू ऑप्शंस कि क्या क्या आपको बनाना है। सो इट इज हियर टू स्टे।
ये अंश आप 2 भागों में सुनेंगे, और ये था भारत के सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर के साथ हुए साक्षात्कार का पहला अंश। बने रहें SBS हिंदी के साथ इस ऑडियो के दूसरे भाग के लिए।
तो ये थी एक खास मुलाकात शेफ संजीव कपूर के साथ। इसका दूसरा भाग सुनेंगे कल के शो में, तो जरूर ट्यून इन कीजिएगा। और हाँ, इन्होंने जो बात करी ना, एक खिचड़ी जो इन्होंने कोल्स में लॉन्च करी है, वो सुन के थोड़ा पानी आ गया मुंह पे, तो मुझे लगता है कि वो तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। खैर, जिन्होंने जरा देरी से ट्यून इन किया है उन्हें बता देते हैं आज का सवाल।
अगर आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा और उसमें हीरो या हीरोइन कौन होंगे? नंबर है 0439-799-767। एक बड़ा ही मजेदार मैसेज आया है व्रजेश जी का मेलबर्न से। वो लिखते हैं, मूवी का नाम होगा ये है आम जिंदगी, हीरो हम खुद और हीरोइन मेरी वाइफ। और कुछ तो सोच भी नहीं सकता, अगर वाइफ सुन रही है या ये रिकॉर्डेड शो बाद में सुनेंगी तो बाजीगर वाली विलन बन जाएंगी। फुल ऑन हंसी मजाक होगा इस मूवी में। राजेश जी, ये आम जिंदगी पढ़ के पता क्या याद आया? मैंगो पीपल। लव आजकल का एक डायलॉग था ना, जब वो बोलते थे आम लोग, यानी कि मैंगो पीपल। जाने का समय आ गया है। और जानकारी के लिए आप SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी जा सकते हैं। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। जल्द मिलेंगे नई खबरें और नई बातों के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।